ओम शांति। हम सबके बीच हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धे हिमलता दीदी जी पहुंच चुके हैं। हम सब उनका बहुत जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ममता की मूरत, करुणा की देवी, दृढ़ता की धनी और ज्ञान की सूरत, आदरणीय हिमलता दीदी जी इंदौर जोन की बगिया को बहुत प्यार स्नेह एवं वात्सल्य की निर्मल धारा से सींच कर बेहद रूहानियत की खुशबू फैलाने वाली सरल सौम्य मृदुभाषी आदरणीय दीदी जी बीएससी की पढ़ाई के बाद जिस्मानी डॉक्टर बनते बनते रूहानी डॉक्टर बन गए और अनेक आत्माओं का इलाज चल रहा है। सचमुच आज आत्माएं ही कितनी कमजोर है और जो दीदी के संपर्क में आता है वो अपने आप को मजबूत समझता है। उसको ऐसे आपकी दृष्टि से शक्ति मिलती है, आपकी वाणी से उसको इतना बहुत अपने अंदर मजबूती आती है तो लगता है कि सचमुच वहां तो थोड़ों का ही इलाज चलता लेकिन यहाँ तो हजारों का इलाज आप करती हैं। ऐसी हमारी आदरणीय हिमलता दीदी जी 1976 में ही आपने अपना संपूर्ण जीवन बाबा के इस बेहद कार्य में समर्पित कर दिया और हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी और आदरणीय कमला दीदी जी जिनके अंग संग रहकर आज्ञाकारी वफादार ईमानदार बनकर आप रही और आज आप जोन को इंदौर जोन को कहां से कहां आपने पहुंचा दिया। नित नए आयाम और नित नई वहां सेवा हो रही है जो प्रतिदिन ऐसे लगता है कि जैसे बाबा आपसे कितने ने कार्य करा रहा है, इतनी सेवा का वहां पर माना कहना चाहिए इतनी सेवा बढ़ती जा रही है। जोन के हर सेवा केंद्र पर कोई न कोई सेवा चलती ही रहती है आपके सानिध्य में। आप एक प्रभावी एवं प्रेरक वक्ता हैं। नारी शक्ति को सबल बनाने अनेक महिला अभियान एवं नैतिक आंतरिक सशक्तिकरण का सफल आयोजन आपने किया हुआ है। इंदौर में संचालित शक्ति निकेतन छात्रावास आपके मार्गदर्शन में पुष्पित पल्लवित हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी की बिजनेस विंग की आप क्षेत्रीय संयोजिका, अनेक सामाजिक संस्थाओं में अपने प्रभावशाली वक्तव्य से जन समूह में अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित किया, आपके द्वारा अतुलनीय सहयोग सकारात्मक कार्यों के लिए आपको इंदौरियन संस्था द्वारा इंदौरी रत्न और महिलाओं में जागृति लाने हेतु लायंस क्लब के द्वारा विशेष अवार्ड तथा पर्यावरण जागृति वृक्षारोपण के लिए ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू में पर्यावरण मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं राजस्थान की अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा आप सम्मानित हुए। 2022 में इंदौर गौरव उत्सव में आपको सशक्त महिला सम्मान से नवाजा गया। इंदौर जोन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा के सीमावर्ती सेवा केंद्रों की आप क्षेत्रीय निदेशिका है। आपकी क्लास का विषय ही है एकरस अचल अडोल अवस्था। दो लाइन में यही कहूं, फूलों से पूछा क्या है जिंदगी तो कहा हंसना है जिंदगी, तारों से पूछा क्या है जिंदगी कहा चमकना ही है जिंदगी, और जब दीदी से पूछा क्या है जिंदगी दीदी ने कहा हर परिस्थिति में एकरस अचल अडोल रहना ही है जिंदगी। इसी विषय पर आदरणीय दीदी जी हम सबको बहुत सुंदर क्लास करेंगे।
ओम शांति। आज हम सभी बहुत ही सुंदर विषय पर सुनेंगे, जैसे बताया एकरस स्थिति अथवा अचल अडोल स्थिति। वर्तमान समय हम देख रहे हैं, बाबा भी हमें बहुत लंबे समय से इशारे देते आ रहे हैं। सभी को याद है ना, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। और वर्तमान समय की हलचल वाली परिस्थितियां, वो भी हमें अभी अंतिम समय का इशारा दे रही है। ऐसे समय पर अपने आप को तपाना, मजबूत बनाना, या कहें दृढ़ता संपन्न तपस्या करने की बहुत ही आवश्यकता है। दृढ़ता संपन्न तपस्या क्यों कहा? क्योंकि कभी कभी हमको जब बहुत जोश आता है, उमंग आता है, या बाबा की कोई ऐसी मुरली चलती है, तो हमें लगता है कि बस अब तो ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। और कुछ समय हम बहुत लगन से, जोश से, उमंग उत्साह से बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लेते, और पुरुषार्थ करते करते कोई परिस्थिति आ गई तो हम फिर से ठंडे हो जाते कि अभी थोड़ा इससे निपट लेते फिर पुरुषार्थ करेंगे। तो जहां हमने थोड़ी भी ढील दी तो तपस्या हमारी ढीली हो जाती है। इसलिए अगर अपने आप को पूरी तरह से तपाना है, मजबूत बनाना है, एक रस स्थिति बनानी है, तो अपनी तपस्या को भी दृढ़ता संपन्न तपस्या करनी होगी। फिर हम देखते हैं एक रस कहेंगे किसको, एक रस स्थिति माना क्या। तो जैसे आप देखते हैं, अगर हम अपना मन विनाशी और परिवर्तन होने वाली वस्तुओं में लगाते हैं तो हमारा मन भी परिवर्तित होता रहता है, तो हमारी स्थिति एकरस नहीं बन पाएगी। तो हमें अपना मन कहाँ लगाना होगा, जो सदा एकरस है, अविनाशी है, वो कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा। अगर हम अपना मन उस परमपिता परमात्मा में सदा लगा के रखेंगे तो ही हमारी एकरस स्थिति, या कहें अचल अडोल स्थिति बन सकती है। दूसरी परिभाषा है एकरस की, एकरस स्थिति अर्थात एक से ही किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी एक से ही हमारे सर्व संबंध और सर्व रिश्ते हों। एक बाबा ही मेरा संसार है, एक ही मेरा संकल्प, एक एक सेकंड, एक एक बोल मेरा एक बाबा की ही लगन में हो, एक एक मेरा कर्म बाबा के प्रति, बाबा की सेवा के प्रति और बाबा की श्रीमत के अनुसार हो। यदि ऐसा हम करते हैं तो हम कहेंगे हमारी एक रस स्थिति है। अब हम देखते कि अगर एक रस स्थिति होगी किसी की तो उसकी निशानी क्या होगी। तो हम देखते हैं कि जो एक रस स्थिति वाले होंगे वो सदा अपने मन से, अपने दिल से, अर्थात स्वयं से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से, सबसे सदा संतुष्ट होंगे। और साथ साथ उनके तन में मन पर हमेशा प्रसन्नता दिखाई देगी, चेहरे में भी और मन पर भी सदा प्रसन्नता, अर्थात संतुष्टता और प्रसन्नता, ये एकरस स्थिति वाले की निशानी है। और एकरस स्थिति का मतलब यही है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे कोई व्यक्ति मेरा पुराना हिसाब किताब बनकर के मेरा सामना करे, चाहे मेरे शरीर का कोई पिछला कर्मों का हिसाब किताब आ जाए, किसी के संस्कार स्वभाव का टक्कर हो जाए, चाहे निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, कैसी भी स्थिति आए, लेकिन उन परिस्थितियों में भी मेरी स्थिति कैसी हो? अगर एकरस स्थिति है तो कैसी होनी चाहिए? संतुष्टता वाली और प्रसन्नता वाली। उस कंडीशन में भी मैं सदा संतुष्ट रहूं। ऐसा न कहूं कि अरे बाबा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कभी कभी हम क्या करते, दूसरों पर दोष लगाना शुरू कर देते, है ना? अगर मेरे अनुसार कोई चीज नहीं हुई, कोई परिस्थिति आई, तो जो संतुष्ट आत्मा होगी वो सदा निस्वार्थी होगी। और कैसी भी परिस्थिति आए निसंकल्प होगी, किसी पर भी दोष नहीं लगाएगी। कभी कभी चाहे कुछ भी हो जाए, हम आई जाता है ना संकल्प मन में, भगवान को मेरे साथ ऐसा नहीं करना था, या कभी हम शरीर को दोष देने लगते, मेरा शरीर ही ऐसा है, क्या करूं, इसके कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाती, या कभी अपने भाग्य को दोष देने लगते, मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया, मेरा भाग्य ही खोटा है, मैं जो भी करती हूं उसमें मुझे सफलता ही नहीं मिलती, अपने भाग्य को दोष देते, कभी भाग्य विधाता को दोष देते, उसने मेरा भाग्य ऐसा क्यों लिखा, मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा क्यों बनाया। तो वो कभी भी जो एकरस स्थिति वाली आत्मा होगी वो किसी को दोष नहीं देगी, क्योंकि जानती है ये जो भी बातें आ रही है वो क्यों आ रही है, मेरा ही कोई पिछला कार्मिक अकाउंट है जो मैंने ही बनाया हुआ है, पर उसको भोगने के लिए कोई तो निमित्त बनेगा ना, जिसके साथ मैंने कुछ किया है तो वो अभी वर्तमान में मेरे साथ कर रहा है, लेकिन मुझे याद नहीं है मैंने किसके साथ क्या किया, कब किया, कौन से जन्म में किया, वो मुझे कुछ भी याद नहीं। करते समय तो हम कभी सोचते नहीं है इतना। बाबा भले ही कहते त्रिकालदर्शी बनकर के कोई भी कर्म करो, आदि मध्य अंत सब सोच समझ कर करो, पर हम करते समय इतना ज्ञान नहीं था तो उस समय हमने सोचा नहीं है, लेकिन जब अभी हमें भोगना पड़ता है तो हमें ख्याल आता है, तो वो जो आत्मा होगी ना एकरस वाली, वो ख्याल भी नहीं चलाएगी, खुशी खुशी अपने हिसाब किताब को, अपने कर्म भोग को, संस्कारों की टक्कर को भी बड़ी संतुष्टता से, धीरज से, ज्ञान को यूज करके कि मेरा कर्जा उतर रहा है, मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, उस भाव से, प्रसन्नता से उस हिसाब किताब को चुक तो करेगी, किसी को भी दोषी नहीं बनाएगी, सबको निर्दोष समझेगी और साक्षी होकर के अपने पुरुषार्थ में चलेगी। तो ये उसकी निशानी दिखाई देगी। फिर हम देखते कि ऐसी आत्मा जो होगी, जैसे आपने देखा होगा, एक बार की बात है, आपको मालूम भी होगा, हमारी दीदी मन मोहिनी थी। आप में से कौन कौन जानते हैं? उनको थोड़ा सा सिरदर्द होता था, ब्रेन में ट्यूमर हो गया था और उनकी सर्जरी करने के लिए उनको मुंबई लेके गए थे। वहां डॉक्टर ने सर्जरी की, सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हुई, लेकिन उसके बाद दीदी कोमा में चली गई। काफी दिनों तक कोमा में रही तो सभी महारथियों के, सभी भाई बहनों के, ब्राह्मण बच्चों के बहुत संकल्प चलने लगे, क्योंकि पहली बार यज्ञ में ऐसी घटना हुई थी। तो सबके बहुत ख्याल चलते रहे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये तो महारथी आत्माएं हैं, इनके साथ भी ऐसा क्यों हुआ, बहुत थॉट चलते रहे। तो जब बाबा को भोग लगाया गया और बाबा ने संदेश दिया, तो सबको ये लगता था पहले कि शायद डॉक्टर ने सर्जरी ठीक से नहीं की, डॉक्टर का दोष है। लेकिन बाबा जब आए और बाबा ने सुनाया संदेश में, भोग में, तो बाबा ने कहा, बच्चे न इसमें भगवान का दोष है न भगवती का दोष है। उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर भगवती था। तो बाबा ने कहा, भगवान का भी कोई दोष नहीं है और डॉक्टर भगवती का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन कर्म की गति बहुत गुह्य है। उस कर्म की गुह्य गति के कारण यहाँ जो भी इस हॉस्पिटल से भी हिसाब किताब है, हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी हिसाब किताब है, मेडिकल की जो दुकानें होंगी दवाइयों के, जहां से लिया वो भी हिसाब किताब है, ये सारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। और दीदी तो बाबा के पास सूक्ष्म वतन में बहुत आराम से है, उसको कोई कष्ट नहीं है, ऐसा बाबा ने क्लियर किया। कर्मों की गति बहुत सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म, बाबा ने कहा, जैसे रस्सी से खटिया को बुनते हैं, लेकिन अगर बहुत महीन सूक्ष्म तारों से, धागों से कोई खटिया को बुने, कितनी सूक्ष्म, बालों से भी महीन। तो कर्मों की गति इतनी गुह्य है। तो दोष किसी का नहीं है, हमारा ही, जिस जिस के साथ कोई कर्मों का हिसाब किताब है, लेन देन है, उसे चुकाने के लिए सारी परिस्थितियां हमारे पास आती है। इसलिए एकरस स्थिति में रहने वाली आत्मा कभी भी किसी को दोषी नहीं बनाएगी। दूसरी बात हम देखते कि जो बीती बातें होती है, हम लोग प्रायः क्या करते हैं, बीती बातों को, पास्ट की बातों को बहुत स्मृति में रखते हैं और उसके अनुसार ही व्यवहार में आते, उसका चिंतन ज्यादा करते। लेकिन जो आत्मा एकरस स्थिति का अभ्यास करती है, पुरुषार्थ करती है या एकरस स्थिति में रहती है, वो आत्मा अपनी बुद्धि को स्वच्छ, उसकी बुद्धि स्वच्छ, मन स्वच्छ, वृत्ति स्वच्छ, दृष्टि स्वच्छ, कर्म भी स्वच्छ। इसका मतलब उसकी बुद्धि में कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति, चाहे किसी ने कितना भी उसके साथ बुरा किया हो, धोखा दिया हो, दुख दिया हो, कितना भी कोई कड़वा बोला हो, अपमान किया हो, कुछ भी किया हो, उन पास्ट की बातों को चाहे कोई व्यक्ति, चाहे अपने साथ के कोई साथी, सहयोगी, अपने परिवार का कोई सदस्य, कोई भी हो, किसी के प्रति भी जरा भी व्यर्थ या नेगेटिव उसके मन में, बुद्धि में, दृष्टि में भी नहीं, स्मृति में भी नहीं। तो इसलिए वो उसका मन, बुद्धि, इसको कहेंगे बुद्धि की स्वच्छता या पवित्रता। इतनी उसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, थोड़ा भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। अगर थोड़ा भी मन में या बुद्धि में किसी के प्रति बीती बातों की स्मृति भी आती है, संकल्प मात्र भी आती है, तो संकल्प भी अगर चलता है तो वो भी क्या है? संकल्प से कहते सृष्टि बनती है। जैसा संकल्प ऐसी हमारी दृष्टि, ऐसी हमारी वृत्ति, ऐसी हमारी सृष्टि। तो एक संकल्प भी सृष्टि बनाता है, वायुमंडल बनाता है, वातावरण बनाता है, पूरे सृष्टि का निर्माण कर देता है। तो अगर थोड़ा भी संकल्प पास्ट का किसी के मन बुद्धि में आया, स्मृति में आया, और उस दृष्टि से उसने किसी व्यक्ति को देखा, कोई व्यक्ति सामने आया और उसकी पास्ट की बातों का उसने चिंतन किया, मान लो जिसने धोखा दिया है वो व्यक्ति सामने आया, तो आपके मन में, बुद्धि में शुद्धता रहेगी? नहीं रहेगी। तुरंत वो बातें याद आएंगी, और जब वो पुरानी बीती बातों की स्मृति आएगी तो आपकी दृष्टि कैसी बन जाएगी, आपकी मन की वृत्ति कैसी हो जाएगी, और आपका कर्म फिर उसके प्रति व्यवहार कैसा होगा, अलग ही हो जाएगा ना। जैसी स्मृति वैसी ही आपकी स्थिति और वैसी ही कृति। तो इसलिए जो एकर स्थिति में रहने वाली आत्मा होगी वो अपनी बुद्धि को बहुत क्लीन और क्लियर रखेगी, वर्णन भी नहीं करेगी। वर्णन करना तो बहुत बड़ी बात है, बीती बातों का, इसने ऐसा किया, ये किया, ये ऐसे हैं, ये फलाने हैं, वर्णन करना, बताना, वो तो बहुत बड़ी बात। लेकिन संकल्प में लाना भी किसी परसेंटेज में हल्का पाप है। सोचो, हम लाते रहते हैं ना, ये तो संकल्प में तो लाते हैं ना, कभी मुख में नहीं लाते होंगे, चलो कर्म में नहीं लाते होंगे, पर संकल्प में तो आता है। और संकल्प के द्वारा हमारी दृष्टि भी कैसी हो जाती है उस आत्मा के प्रति, बोल कैसे निकलेंगे। तो हमें अपने आप पर बहुत ध्यान देना है। अगर मुझे अपनी स्थिति को एकरस बनाना है तो मेरी बुद्धि को बहुत क्लीन और क्लियर बनाना है, बहुत स्वच्छ बनाना है, तब मैं उस स्थिति में अपने आप को टिका सकती हूँ। और जब ऐसी बुद्धि होगी तो ही शिव बाबा हमें रोज कहते, बच्चे ऐसा समय आएगा जब आपको बाबा की टचिंग और कैचिंग से ही काम चलाना होगा। आजकल के साइंस के साधन ये कुछ काम नहीं आने वाले, कोई व्यक्ति आपका सहयोगी नहीं बनेगा, लेकिन आप कहां किस परिस्थिति में अकेले होंगे, कौन आपको मदद कर सकेगा? केवल और केवल बाबा। और बाबा कई बार हमको मदद करते भी हैं, लेकिन जब परिस्थिति आ जाती है तो हम क्या करते, किसको टचिंग कैचिंग होगी, जिसकी मन बुद्धि इतनी स्वच्छ होगी, प्योर होगी, तो बाबा की टचिंग को कैच कर सकेंगे ना। बाबा हमें कुछ श्रीमत देना चाहते हैं, हमारी बुद्धि को कोई बात टच कर रहे हैं, बच्चे ऐसा होगा कि आप जिस विमान में बैठेंगे या आप जिस ट्रेन में बैठेंगे या जिस कार से या बस से आपको जाना होगा, आप चले गए और उसके बाद रास्ता ही बंद हो गया, जा ही नहीं सके, पर आपको बाबा की टचिंग मिली, प्रेरणा मिली, आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। कभी बाबा कहते बच्चे बाढ़ आएगी, यहाँ तक आकर रुक जाएगी। आपने देखा भी होगा भरूच में कितनी जगह कहाँ कहाँ भूकंप आया, क्या हुआ, अपने बच्चे सुरक्षित रहे। अभी भी कहाँ कहाँ कुछ कुछ होता रहता है, रशिया में इतना युद्ध चलता रहता है, लेकिन क्या हो रहा है, बाबा के बच्चे सब जगह सुरक्षित है। किस आधार पर है? बाबा की टचिंग मिलती रहती है और उस अनुसार वो बाबा की याद में उस रीति से पुरुषार्थ करती। तो बाबा की टचिंग को कैच करने के लिए हमारी बुद्धि इतनी क्लीन होनी चाहिए, अर्थात उस टचिंग को कैच करने के लिए हमारे बुद्धि का स्विच ऑन होना चाहिए। कई बार बाबा कहते मैं टचिंग देता हूं, क्योंकि मैं तो बाप हूं ना, बच्चों को किसी परिस्थिति में कहां फंसा हुआ देखता हूं, आवश्यकता समझता हूं मदद करने की, तो मैं बच्चों को टच करता हूं। पर बच्चों की बुद्धि जो है ना उस समय कहां फंसी रहती है, परिस्थितियों के अंदर ही उलझे रहते हैं। तो जो बाबा टच कर रहा है वो संकल्प को वो कैच नहीं कर सकते, उनका कैचिंग का स्विच ऑफ रहता है। बाबा उसको भी खोलने के लिए बहुत मेहनत करते, और जब वो खुलता है तब तक बच्चे कुछ उल्टा कर चुके होते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं, और जो करना चाहिए जो बाबा टच कर रहा था वो उनको टच ही नहीं होता। इसलिए बाबा कहते बच्चों को जितना हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी तो हमारा कैचिंग वाला जो स्विच है ना वो ऑफ के बदले कैसा रहेगा, सदा ही ऑन रहेगा। तो बाबा जो भी टच करेगा हम उसको सहज कैच कर सकेंगे। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि की लाइन बहुत क्लीन और क्लियर रखनी है। फिर हम देखते हैं ऐसी टचिंग को कैच करने के लिए हमारी एकाग्रता की शक्ति चाहिए, एकांतवासी होना पड़ेगा। तो एकाग्रता को आप देखते हैं कि जैसे शक्तियों का पोज देखते हैं ना, शक्तियों का जो भी चित्र होते हैं उनका जो वरदानी पोज होता है एकाग्रता वाला होता है ना, हाथ भी ऐसे, शरीर भी बिल्कुल एकाग्र, हाथ, दृष्टि भी और स्थिति भी, संकल्प भी, जैसे एक ही संकल्प में, एक ही पोज में शरीर भी संकल्प भी और दृष्टि भी एकदम स्थिर होती है, एकाग्र होती है। बाबा कहते तुम बच्चों को भी एकाग्रता अपने अंदर लाना, माना किस किस की एकाग्रता चाहिए, शरीर की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता, अपने संस्कारों की एकाग्रता, स्वभाव की एकाग्रता, अपनी दृष्टि की, वृत्ति की, स्मृति की और स्थिति की भी एकाग्रता। कितने प्रकार की एकाग्रता हो गई। जब इतना हम एकाग्रता का अभ्यास करेंगे, अटेंशन रखेंगे, तो हम सहज ही एकाग्रता की स्थिति में टिक सकेंगे और तब हमारे अंदर वो शक्ति जमा होगी जिससे हम सेकंड में किसी भी पावरफुल स्थिति में स्थित हो सकते, एक के अंत में टिक सकते हैं, चाहे वो स्थिति परमधाम वाली हो, बीज रूप स्थिति हो, चाहे अव्यक्त फरिश्ता स्थिति हो, किसी भी एक शक्तिशाली स्थिति में एक ही संकल्प में स्थित होना, उसको कहेंगे एकाग्रता और एकांतवासी बनना। तो जितना जितना हम ये अभ्यास करेंगे एकाग्रता में टिकने का, अपने मन बुद्धि को शरीर को, ये एक तपस्या है, इतना आसान नहीं। तो जितना हम तपस्या करते हैं उतना ही हमारी स्थिति ऐसी एकाग्रता वाली बनती जाएगी और एकांतवासी बनेगी। अब ऐसा बनने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो एक नामी बनना होगा। एक नामी बनना माना मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, है ना? तो एक नामी अर्थात ऐसा नहीं कि एक नामी बनने में हमें क्या विघ्न आता है, कभी हम किसी के लगाव में आ जाते और कभी हम किसी के संस्कारों के टकराव में आ जाते हैं। तो जब भी हम किसी के लगाव में आएंगे या किसी से हमारा टकराव होगा तो याद कौन आएगा? कोई व्यक्ति याद आएगा ना, बाबा याद आएगा, या तो कोई व्यक्ति लगाव के कारण भी उसकी कोई विशेषता, कोई गुण, कोई बात करने का ढंग, तो कुछ ना कुछ बातें, कोई सहयोग, कोई ना कोई विशेषता, कोई गुण, कुछ ना कुछ याद आएगा उसका। और अगर टकराव है तो उसका कोई ना कोई अवगुण, कोई संस्कार, कोई बातें, वो याद आएंगी। और जब ये सब याद आएगा तो व्यक्ति का चेहरा याद आएगा, आता है ना? तो बुद्धि में बाबा तो उस समय याद नहीं है कि याद है, होता है बाबा याद। तो एक नामी कहाँ बने? तो एक नामी बनना माना कुछ भी हो जाए एक बाबा में ही मेरी बुद्धि लगे। तो जब कोई भी चीज मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सके, चाहे मेरी इंद्रियां, चाहे परिस्थिति, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे किसी का संस्कार स्वभाव, कोई भी मुझे अपनी ओर खींच न सके, एक बाबा में ही मेरी बुद्धि लगी रहे, उसको कहेंगे एक नामी। फिर बाबा कहते इकोनॉमी, इकोनॉमी भी करनी है। तो हम धन की इकोनॉमी तो कई बार कर लेते, स्थूल धन की, लेकिन और भी तो धन है। बाबा हमको कौन कौन से धन बताते? समय भी धन है, संकल्प भी धन है, हमारे गुण, शक्तियां, ज्ञान, सब कितना अमूल्य धन हमारे पास है। उन सब को हम कहीं व्यर्थ तो नहीं गंवाते, उन सब का हमें बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि जहां अगर हम कोई, आप देखते हैं कि जब दृढ़ता रहती है, एकाग्रता रहती है, तो उसका आधार क्या होता है? अंतर्मुखता। और अगर बाहर मुखता है, हमारी इंद्रियां बाहर मुखी है, बाहर के रसों को लेने की तरफ आकर्षित होती रहती हैं, तो हमारी एनर्जी सारी वेस्ट होती रहती है, हमारे संकल्प भी बहुत चलते। तो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ व्यवहार, व्यर्थ संबंध भी हमारे बनते रहते। इन सब को हमें क्या करना है? जैसे भक्त लोग व्रत करते ना, ताकि हमारी एकाग्रता बनी रहे, कुछ न कुछ भोजन नहीं खाएंगे या और कोई चीज का, कि एकाग्रता बनी रहे, आलस नहीं आए। तो हमें किस बात का व्रत करना है? व्यर्थ का। बाबा कहते व्यर्थ संकल्प ही क्या है? अपवित्रता है। दूसरे शब्दों में व्यर्थ संकल्प ही सूक्ष्म रस्सियां हैं। जो हमें कर्म बंधन में बांध देती है। व्यर्थ संकल्प एक प्रकार से अपवित्रता है। पर हम आज तक कभी पहले, ये तो बाबा ने समझ दी, इसके पहले कभी हमने व्यर्थ संकल्प को अपवित्रता माना? आज भी हम उसको इतना नहीं महत्व देते कि यह अपवित्रता है। काम क्रोध आदि विकारों के वश कोई संकल्प चले तो कहेंगे अपवित्रता है, पर व्यर्थ संकल्प इतना कॉमन हम चलाते हैं। थोड़ा छोटी मोटी बात हुई, कोई ऊपर नीचे घटना हुई, कोई परिस्थिति आई, सबसे पहले हम क्या करते? व्यर्थ संकल्प ही चलाते। तो व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। दूसरी तरफ व्यर्थ संकल्प चलाना माना क्यों, क्या, कैसे करके अपने को उलझाना। तो जितना हम क्यों, क्या, कैसे करते जाते, तो वो परिस्थिति या वो बात क्या होती जाती है? राई से धीरे धीरे पहाड़ बनती जाती। किसने बनाई? किसने बनाई? हमने बनाई। तो क्या हुआ, हमने ये खुद ही संकल्प चला चला के अपने मन को अशुद्ध किया, अपनी बुद्धि को खराब किया, अपनी वृत्ति को, अपने कर्म को, अपने संबंध को, सबको खराब करते जाते, और ये कर्म का बंधन हमारा बंधता जाता। तो ये सूक्ष्म रस्सियां हैं जो हमें कर्म बंधनी बनाती है। हमें किसके कर्म बंधनी बनना है? हमने बाबा से क्या वायदा किया है? बाबा आप जहां बिठाओ, जहां रखो, जो खिलाओ, जो पहनाओ, जो सेवा कराओ, जहां रखोगे वैसा रहेंगे, जैसा रखोगे वैसा किया है आप सबने वायदा किया है या नहीं? किस किस ने किया है? सभी ने किया है। लेकिन उस समय क्यों, क्या, क्यों आ गया? जब कोई परिस्थिति आई हमें वो स्वीकार नहीं हुई ना। अगर वो परिस्थिति को हम स्वीकार करके और बाबा की श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ करते तो हम क्यों, क्या, कैसे करते ही नहीं, बल्कि बाबा कहते हाय हाय के बदले हम क्या करते? वाह वाह करते, वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह परिस्थिति, मेरी स्थिति को और ही अच्छा बनाने वाली आई। तो हम कभी भी उलझते नहीं, पहाड़ नहीं बनता, बल्कि अगर पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी हम क्या कर सकते थे? पहाड़ से राई बना सकते थे। कैसे? व्यर्थ नहीं चलाकर, उसके बदले शुभ संकल्प चलाकर। तो शुभ संकल्प कैसे चलता? जो हो रहा है वो अच्छा, जो हुआ, जो बीत गया वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, और बाप भी अच्छा, मैं भी अच्छा, जो परिस्थिति ला रहा है वो भी अच्छा, सब अच्छे। अगर ये संकल्प, इस तरह के संकल्प हम चलाते हैं तो ये संकल्प क्या करते? वो कर्म बंधनी रस्सियों को कैंची का काम करके काटते हैं। क्यों, क्या, कैसे से हम कर्म बंधन बनाते हैं, बांधते हैं खुद को बंधन में, और शुभ संकल्प चला के, पॉजिटिव संकल्प चला के हम क्या करते? उन बंधनों को काटने की वो कैंची बन जाती है। तो कैंची अच्छी कि बंधन में बांधना अच्छा? पर आम हमारी आदत क्या बन गई है? खुद को बंधन में बांधने की, और फिर हमारे ऊपर बोझा चढ़ता जाता है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, फिर हमारी लौरों से अपेक्षा रहती है। जब हम ऐसे उलझते, राई का पहाड़ बना लेते, तो हम क्या करते? सबसे अपेक्षा रखते, मुझे इससे ये प्यार मिले, मेरे से ये दो शब्द अच्छे से बोले, मेरे अनुसार चले, और क्या क्या नहीं, जो मैं कहूँ वैसा करे, मेरे अनुसार होना चाहिए, अपेक्षा सबसे हम सोचते, और सबसे लेने की कुछ न कुछ हमें चाहिए चाहिए आ जाता। लेकिन बाबा कहते सिर्फ दो बातों का अटेंशन रखो, कभी भी लेवता नहीं बनो। हमेशा दाता बन के देने का ही ख्याल रखो। मेरा पिता दाता है, कितना मुझे खजाना दिया है, मेरी झोली कितनी भरपूर है, तो मैं कंगाल थोड़ी हूँ। मुझे क्या चाहिए, सागर से मुझे सब कुछ मिल रहा है, प्यार का सागर मुझे प्यार के सागर में डुबो रहा है, मैं समाती जा रही हूँ, शक्तियाँ भरपूर हैं, गुण सब कुछ दे रहा है, शांति आनंद जो मुझे चाहिए वो सब दे रहा है, फिर मैं किसी से अपेक्षा क्यों करूँ, किसी से क्यों मांगू। तो सदा मुझे ये ध्यान रखना है, मैं दाता हूँ, दाता की बच्ची हूँ, मुझे हमेशा सबको देना है। दूसरी बात का अटेंशन रखना है कि कोई भी परिस्थिति आती है, क्यों हम उसको भारी बना देते, वो बोझ कब लगने लगती है, जब हमारे अंदर समाने की शक्ति नहीं होती या सहन करने की शक्ति नहीं होती। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है, हम समा नहीं सकते तो एडजस्ट नहीं कर पाते किसी के साथ, सहन नहीं कर सकते तो एडजस्ट नहीं कर पाते, इसलिए फिर उसी की थॉट चलते रहते, ये ऐसे करते आखिर हम कब तक सहन करेंगे, क्या मुझे ही सहन करना है, क्योंकि किसी के अवगुणों को हम समा भी नहीं पाते। तो अभी कुछ दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे किसी की कमियों को तुम देखो ही नहीं, जैसे सूर्य का ग्रहण या चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो क्या कहते, उसको देखना नहीं है, नहीं तो नुकसान किसका होता, हमारा अपना नुकसान होता। ऐसे ही किसी के द्वारा कुछ भी हो रहा है, किसी की कमी है, अवगुण है, वो अपने संस्कार के वशीभूत है, वो अपने कर्मेंद्रियों के वशीभूत है, या मेरा हिसाब किताब के लिए निमित्त है, चुकाने के लिए, लेकिन मैं उसको अगर उसकी कमी को देखती हूँ और उसके कारण मेरी दृष्टि वृत्ति को चेंज कर लेती हूँ। बाबा ने जो यथार्थ दृष्टि वृत्ति मुझे कही है, आत्मिक और शुभ भावना की, कल्याण की वृत्ति सबके लिए रखना, अगर वो नहीं रखती हूँ क्योंकि उसके संस्कार स्वभाव मेरे सामने आते हैं तो मेरी वृत्ति बदल जाती ना, तो मैं मेरे को ही ग्रहण लग जाता, उसकी बात से मेरा ही नुकसान हो जाता, मेरी स्थिति को ग्रहण लग जाता, मेरा अपना नुकसान मैं कर लेती हूँ। इसलिए मुझे जितना हो सके कौन सी शक्ति को अपने अंदर धारण करना है, अगर स्थिति को एकरस बनाना है, कोई कुछ भी कर रहा है कोई बात नहीं, अपना दिल बड़ा रखो, सागर के समान रखो, सागर के बच्चे हैं ना हम, सागर के अंदर कितनी चीजें समा जाती, बड़े बड़े जहाज समा जाते हैं, कितनी चीजें, तो हम भी अपने ही साथी हैं, बाबा के ही बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं या लौकिक में हैं, कोई भी है, लौकिक हो अलौकिक हो, कार्यस्थल पर हो, वो अपने संस्कार के वशीभूत है, लेकिन मुझे क्या करना है, एकरस स्थिति वाली आत्मा सदा अपने को बाबा के श्रीमत के अनुसार ही चलाएगी, बाबा का हाथ उसकी सदा हाथ में होगा, श्रीमत रूपी हाथ सदा वो हाथ में रखकर चलेगी, तो उसे किसी भी बात को सहन करने में या समाने में भारी नहीं लगेगा। वो शरीर से कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन में कभी अपने को बांधेगी नहीं, मालिक होकर के कर्म करेगी, न्यारा होकर के कर्म करेगी, जीते जी। बाबा तो कहते बच्चे तुम्हें स्थिति कैसी बनानी है, एक मुरली में बाबा ने कहा कर्मातीत स्थिति माना, जीते जी एकदम निरसंकल्प स्थिति, कुछ भी हो आपका कोई भी संकल्प ना चले, दुख की परिस्थिति में भी दुख की महसूसता ना हो, कोई संकल्प ना चले, जीते जी शरीर से न्यारा अशरीरी बनना, अर्थात बाबा ने कहा था मुर्दा बनने के अभ्यासी बनना। मुर्दे को कभी फील होता है? फील होता है? उसको कुछ भी करो तो बाबा कहते बच्चे कर्मातीत स्थिति बनाना है, तो उसका मतलब क्या है? वही एकर स्थिति, अचल अडोल स्थिति, कुछ भी हो, कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, न मेरे संकल्प चले, न मेरी स्थिति को वो हिला सके, हलचल में भी ना आए, अचल अडोल, ऐसी मुर्दे जैसी स्थिति, उसको कहते हैं एक रस स्थिति, अचल अडोल स्थिति। इतना वो देह से न्यारा, इतना उसकी बुद्धि प्योर, जीते जी भले कोई कुछ भी कर रहा है पर न तो उसकी दृष्टि में परिवर्तन आएगा, न उसकी वृत्ति में परिवर्तन आएगा, न उसका भाव बदलेगा, न उसकी स्थिति बदलेगी। सब कुछ होते हुए भी एक्यूरेट बाबा की श्रीमत अनुसार उसकी दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति सब कुछ होगी। जैसे आप देखो ब्रह्मा बाबा की जब संपूर्णता की स्थिति थी तो कितना न्यारे और प्यारे बनते जा रहे थे। वो अपनी एकदम ऊंची स्थिति, कर्मातीत स्थिति में पहुंचते जा रहे थे, बच्चे आते थे, समाचार सुनाते थे, लेकिन बाबा 5 मिनट में समाचार का सार सुन लेते थे, समझ लेते थे और सेकंड में अव्यक्त अशरीरी स्थिति में चले जाते थे और बच्चों को भी खुश करते थे और अपनी अंतर्मुखता की स्थिति को भी कायम रखते थे। और किसी भी बात से परिस्थितियां कितनी आई लेकिन बाबा ने कभी अपनी स्थिति को हिलाया नहीं। तो वो एकर स्थिति वाली आत्मा, कर्मातीत स्थिति वाली आत्मा, या कहे अचल अडोल स्थिति वाली आत्मा जो होगी वो कभी भी कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर कर्म नहीं करेगी। अगर वशीभूत होगी तो कर्म बंधन बन जाएगा, कर्म उसके लिए बोझ बन जाएगा, उसका फिर वो संस्कारों का भी उसके ऊपर बंधन हो जाएगा। तो जो कर्मातीत स्थिति या एकर स्थिति वाली आत्मा होगी वो सदा सारे बोझों से मुक्त, सारे बंधनों से मुक्त होगी, बहुत प्योर, एकदम न्यारी प्यारी अशरीरी स्थिति में, बहुत ऊंची स्थिति में। और इतनी प्यारी वो स्थिति होगी कि उस स्थिति में वो स्थित होगी लेकिन उसके वाइब्रेशन इतने शांति के, शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलते रहेंगे, सारे वायुमंडल को, वातावरण को भी वो इतना ही शक्तिशाली बना देंगे। और उस वातावरण में जो भी आएगा उस आत्मा को भी वो वाइब्रेशन बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे शक्तिशाली बना देंगे। तो ऐसी न्यारी और प्यारी अचल अडोल स्थिति, एकदम प्योर बुद्धि वाली, प्योर मनसा, प्योर वृत्ति, ऐसी स्थिति हमको बनानी है। और ऐसी स्थिति ही जब हमारी बनती जाएगी जितनी, तो आपको बाबा की टचिंग और कैचिंग भी होती जाएगी, जो आपको अंत समय में या हलचल वाली परिस्थितियों में बाबा की मदद लेने में बहुत बहुत सहयोग करेगी। और उसी स्थिति से जो बाबा कहते हैं ना, अंत में आपके सामने भक्त भी आएंगे, लंबी लाइन लगेगी, जो कुछ आपने पाया है वो आपको औरों को देना होगा, लेकिन कैसे देना होगा? बोल के? बोलने का समय नहीं होगा, ज्ञान सुनाने का समय नहीं होगा, एक सेकंड भी आप सुना नहीं सकेंगे इतनी लंबी लाइन, लेकिन आपकी वो संपूर्णता की स्थिति वो प्योर स्थिति, जब आप एक ही संकल्प में टिक जाएंगे, इन आत्माओं का भी कल्याण हो और बाबा की याद से सूक्ष्म शांति के, शक्ति के वाइब्रेशन आप देते रहेंगे, प्रेम के, जो क्योंकि आत्मा अपने सारे ही सातों गुणों से संपन्न होगी, इतनी सतोगुणी बन चुकी होगी, तो वो आत्मा बिना बोले, सामने वाला भी बोलेगा नहीं कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन आपकी स्थिति इतनी पावरफुल और सातों गुणों से संपन्न प्योर होगी, जो उसको चाहिए वही आपकी दृष्टि से उसको मिल जाएगा और वो भी तृप्त हो जाएगी, जिसको बाबा कहते नजर से निहाल करना। पर नजर को पहले, अपनी दृष्टि को इतनी प्योर, इतनी पावरफुल, इतनी गुणों से, शक्तियों से संपन्न, इतना प्यार से भरपूर हमको करनी होगी, तब हम औरों को भी प्राप्ति करा सकेंगे, उनकी झोली भी भरपूर कर सकेंगे और उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए हमें सतत अभ्यास करना होगा, ऐसे नहीं थोड़े दिन किया छोड़ दिया, नहीं, दृढ़ता संपन्न तपस्या, ऐसी अटेंशन रखना, इस बात की प्रैक्टिस करना, इन बातों को, इन पॉइंट को अपने जीवन में चेक करके धारण करना और उस अनुसार पुरुषार्थ करना, एक बाबा ही बस मेरा संसार है, उसके सिवा कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई आपको गिराने की कोशिश करे, कुछ भी आपके साथ करे, लेकिन श्रीमत का हाथ कभी नहीं छोड़ना, कभी अपनी मनमत नहीं मिलाना कि इतना तो चलता है, ऐसे तो सभी करते हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा, ये सब आलस अलबेलापन है। लेकिन बाबा की श्रीमत पर जितना हम चलेंगे, मनमत को खत्म करेंगे, पर मत को भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो ही हम एक बाबा के होकर, बाबा की श्रीमत पर चलकर, जैसे बाबा ने कहा ना, आज मुरली में आगे आगे घोट होता है, पीछे सजनी होती है, तो हम सब बाबा के साथ सजनी बनकर, हाथ में हाथ देकर वापस अपने घर जा सकेंगे। तो ऐसी ऊंची स्थिति हम सबको बनानी है। ओम शांति।
जो शत्रु बन कर आ